नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बाधित किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में विकास पहुंच रहा है। गृहमंत्री लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री शाह ने कहा कि 2024 से मार्च 2026 तक मुठभेड़ों में 706 नक्सली मारे गए। उन्होंने बताया कि 4839 नक्सलियों आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है।
आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग लगभग समाप्त। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएससी सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है।
श्री शाह ने देश में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान में शामिल अर्धसैनिक बलों, पुलिस और लोगों के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले लोकसभा में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि देश के 200 जिलों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 3 जिलों तक सिमट गया है। कांग्रेस के सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ये विधेयक पहले संसद की प्रवर समिति को भेजा गया था। लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक आईबीसी 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों ने एनपीए से कुल 1,04,000 करोड़ रूपये से अधिक की वसूली की है और इनमें से 54,528 करोड़ रूपये से अधिक की वसूली सिर्फ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के माध्यम से हो पाई है। राज्यसभा में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने भारत नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे वावथराण में 19,806 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की 10,921 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं तथा गुजरात सरकार की 8,886 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 128 रन का लक्ष्य दिया। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के छठे दिन आज रायपुर में हॉकी और फुटबॉल मैच हुए, जबकि अंबिकापुर में कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।